का तिरुभाव दिवस है,
उस उपलक्ष्य में तिरुभाव भजन हम गा रहे हैं। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हिना प्रभु को था गिला ईश्वर पुरी ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता, कहाँ दास रघु नाथ पति से पावा, कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा, एक काल को था गिला गोरा नटराज, पाषाण को तीवो माथा अनाले पासिबो, गौरांग गुणेरा निधि कोथा दिले पावो, सब संगीरा संगे जे कहिलो बेला, संग न पाया कंधे नरो संदास, जय वैष्णव ठाकुर, जय ईश्वर पुरे ठाकुर। नित गौर हरि बोल,
ईश्वरपुरी तिरुभावत की महामहोत्सव की। तो सबसे पहले ईश्वरपुरी के बारे में जो समाधि पुस्तक में लिखा है इसको हम पढ़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर चैतन्य भागवत में जो लीला है चैतन्य महाप्रभु की ईश्वरपुरी के साथ उससे हम सुनेंगे। माधवेंद्रपुरी से कृष्ण प्रेम का बीज प्राप्त करके श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंत में हिल नहीं पाते थे, तो सब प्रकार की विनम्र सेवाएं करते हुए ईश्वरपुरी ने यहाँ तक कि उनका मलमूत्र भी साफ किया। ये बहुत बड़ा लाभ है, अपने गुरु का जो है मलमूत्र साफ किया, बहुत ही जो है निम्न सेवा करके उनको क्या प्राप्त हुआ, भगवान प्राप्त हुए। ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की सहायता की, श्री कृष्ण का स्मरण करने में हमेशा हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे और राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाते रहते थे। माधवेंद्रपुरी को प्रसन्न करके इस प्रकार के निम्न सेवाओं के द्वारा ईश्वरपुरी ने कृष्ण प्रेम का भंडार प्राप्त किया अपने गुरु महाराज से। तो इसमें बड़ी प्रसिद्ध घटना है कि माधवेंद्रपुरी के साथ रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी ये दो शिष्य थे। तो रामचंद्रपुरी ने अपने गुरु महाराज से बहस की, जिस समय माधवेंद्रपुरी अपनी मृत्यु शैया पर कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे थे और विलाप कर रहे थे, तो रामचंद्रपुरी ने उनको उल्टा समझाना शुरू किया। क्या कहा कि अरे ये हृदय ही मथुरा है और इसी में ही ब्रह्म का निवास है, आप किसके लिए शोक कर रहे हैं? तो ये तो बहुत ही निम्न स्तर का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान तो बहुत निम्न स्तर का है। और वे तो जना कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे थे, बहुत ऊंचे स्तर पर थे कृष्ण के प्रेम में, अब वो उनको जो है ना ये ज्ञान से खिला रहे हैं। तो उन्होंने फिर शाप दिया कि तुम अपना मुंह मत दिखलाओ, मेरे से दूर जाओ, तुम्हारा मुंह अगर देख करके मैं शरीर छोड़ूंगा तो नरक में जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्म सायुज्य तो नरक के समान है, भक्तों के लिए नरक के समान है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुंह देख करके तो मैं नरक में जाऊंगा। तो इस तरह से रामचंद्रपुरी का त्याग कर दिया माधवेंद्रपुरी ने, और ईश्वरपुरी को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। आगे इसमें लिखा है, श्री ईश्वरपुरी ने और भी विशेष विनम्रता का परिचय दिया जो कि सच्चे वैष्णव का आभूषण है। जब वे सबसे पहले अद्वैताचार्य से मिले, अद्वैताचार्य और ईश्वरपुरी दोनों गुरु भाई हैं, दोनों ही माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, एक गृहस्थ हैं और एक सन्यासी हैं। लेकिन सन्यासी होते हुए भी अद्वैताचार्य के घर में जब ईश्वरपुरी गए तो उन्होंने देखा कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, अद्वैताचार्य अपने घर में भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ईश्वरपुरी बिल्कुल धैर्यपूर्वक बैठ गए, दूर बैठ गए और पूजा को देख रहे थे। यद्यपि वैष्णव सन्यासी थे तो भी ईश्वरपुरी ने अपने को परिचय दिया, अपना परिचय दिया कैसे कि मैं सबसे निम्न श्रेणी का शूद्र हूँ। अद्वैताचार्य ने जब उनसे पूछा कि आप अपना परिचय बताइए, तो ईश्वरपुरी कहते हैं मैं निम्न श्रेणी का शूद्र हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि पूरे जगत के गुरु हैं, इन्होंने ईश्वरपुरी का सम्मान किया इनसे दीक्षा ग्रहण करके। और एक दिन ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य के घर में आए, जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे तो भगवान ने स्वयं उनके लिए भोजन तैयार किया चैतन्य महाप्रभु ने, और प्रेम पूर्वक सेवा की अपने गुरु की, और प्रसाद खिला करके भगवान चैतन्य ने उनके शरीर पर चंदन का लेप किया और सुगंधित फूलों की माला पहनाई। इस प्रकार के उदाहरण के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया कि कैसे गुरु परंपरा की सेवा और उचित पूजा करनी चाहिए ना। जब ईश्वरपुरी के जन्म स्थान से भगवान चैतन्य गुजर रहे थे, कुमारहट्ट ईश्वरपुरी के जन्म स्थान है, तो भगवान गौरांग ने वहां की कुछ धूल ले ली, उस जन्म स्थान की धूल ले ली, और बहुत प्रसन्नता से उन्होंने कहा कि ये धूल मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। तो इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। तो अब हम ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत से इनके दिव्य चरित्र के विषय में पढ़कर सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। जिस समय चैतन्य महाप्रभु विद्या अध्ययन का आनंद ले रहे थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपना कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं किया था, तो ईश्वरपुरी उस स्थान पर आए। तो इसमें लिखा है, श्री विश्वम्भर प्रभु, उस समय चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वम्भर, विद्या अध्ययन में आनंद ले रहे थे और माता सची का आनंद भी बढ़ा रहे थे। इसी समय श्री ईश्वरपुरी अति गुप्त वेश धारण कर नवद्वीप में आप पहुंचे। ये सबसे पहले मिलन है ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु का। उनकी वेशभूषा को देखकर ये पता नहीं चलता था कि ये भक्त हैं या मायावादी सन्यासी, ये पता नहीं चलता था। परंतु ये कृष्ण रस में बेहबल रहते थे और श्री कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त थे। उनको इस वेश में कोई भी पहचान नहीं सका और भ्रमण करते हुए ये दैव योग से अद्वैत प्रभु के घर जा पहुंचे। इन्हें कुछ पता नहीं था कि किसका घर है, लेकिन अद्वैताचार्य जो इनके गुरु भाई हैं उनके ही घर में आ गए, जहां श्री अद्वैत प्रभु बैठकर सेवा भजन कर रहे थे। वहां उनके आगे जाकर बड़े संकुचित होकर श्री पुरी जी बैठ गए। वैष्णव का तेज वैष्णव से छुपा नहीं रह पाता, अतः बार बार श्री अद्वैत उनकी तरफ देखने लगे। अब अद्वैताचार्य सेवा पूजा में लगे हैं तो बात तो नहीं कर पाते हैं, है ना, सेवा पूजा छोड़ करके वो बात तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बार बार देख रहे हैं ईश्वरपुरी की तरफ। ईश्वरपुरी बैठे हुए हैं वहीं पर है? लेकिन एक भक्त का जो ना भक्ति प्रति जो आकर्षण है तो वो जो है बड़ा प्रबल हो रहा है। अध्ययन सुखे प्रभु विश्वम भरे राय निरवधि जननी रे आनंद बढ़ाई। हेन काले नवद्वीपे श्री ईश्वर पुरी आयिले न अति अलक्षित देश धरी। कृष्ण रसे परम भेवल महाशय एकांत कृष्ण रे अति प्रिय दयामय। तान वेश ताने के हो चिन्हिते न पारे दैव गिया उठिलेन अद्वैत मंदिरे। जेखाने अद्वैत सेवा करे न बसिया सम्मुख बसीला बड़े संकुचित हयम। वैष्णवीर तेज वैष्णवीर न लुकाए पुनः पुनः अद्वैत तहार पाने चाहे। अब अद्वैताचार्य ने अपनी सेवा पूजा जब समाप्त की तो पूछा, महोदय आपका परिचय, मुझे ऐसा लगता है आप वैष्णव सन्यासी हैं। तो ईश्वरपुरी ने कहा, मैं एक क्षुद्र अधम जीव हूं, आपके चरण दर्शन के लिए आया हूं। ये विनम्र है। श्री मुकुंद दत्त ने उन्हें वैष्णव सन्यासी जानकर श्री कृष्ण चरित्र का एक गीत बड़े प्रेम से गाया। श्री मुकुंद के गीत सुनते ही ईश्वरपुरी को क्या हुआ, बेहोश होकर के पृथ्वी में गिर गए। मुकुंद दत्त ने ये जानकर के ये वैष्णव सन्यासी हैं तो इनको अच्छा लगेगा, तो कृष्ण का जो ना हाँ कृष्ण प्रेम का गीत गाया तो ये बेहोश होकर गिर गए। नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वर्षा की भांति प्रेमाश्रुधारा बहने लगी। जैसे तैसे श्री अद्वैत ने उन्हें उठाकर गोद में लिया। उनके भी अंग उनके नेत्र जल से भीग गए। उनका प्रेम बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था, संवरण नहीं हो पा रहा था। आनंद पूर्वक श्री मुकुंद उच्च स्वर से श्लोक पढ़ने लगे। अद्वैत बोले न बाप तुम्हें को न जन वैष्णव सन्यासी तुम ही है न लय मन। बोले न ईश्वर पूरी आमे शूद्रधम देखी बारे आई लाम तुम्हारे चरण। बोझिया मुकुंद एक कृष्ण रे चरित गायते लगिला अति प्रेम रे सहित। जेई मात्र सुनि लेन मुकुंदे रे गीते पड़िला ईश्वर पूरी ढली पृथ्वी ते। नयन रे जले अंत नाहि के तहान पुनः पुनः बाणे प्रेम धारा रे पायन। आसे व्यस्ते अद्वैत तो लीला ने जे कोले सिंचित हाइले अंग नयन रे जले। संवरण नहे प्रेम पुनः पुनः बाणे संतोषे मुकुंद उच्च करी श्लोक पढ़े। सब वैष्णवों ने श्री पुरी के प्रेम को देखा, सबके मन में अतुल आनंद हुआ। फिर सबको पता लगा कि ये ईश्वरपुरी हैं। ईश्वरपुरी का नाम जानते थे लेकिन कभी देखा नहीं था। जब पता चला कि ये ईश्वरपुरी हैं, इनका प्रेम देख करके सब हरी हरी स्मरण करने लगे। देखिया वैष्णव सब प्रेमे रे निकार अतुल आनंद मने जन्म ले सभान। पाछे सभे छिनी लेन श्री ईश्वर पुरी प्रेमे देखे सभे स्मारे न हरी हरी। इस प्रकार श्री ईश्वरपुरी नवद्वीप में विचरण करते रहे, कोई इन्हें पहचान ना सका। केवल कुछ भक्तों ने पहचान पाया। कौन? आद्याचार्य, मुकुंद दत्त और भी उनके संपर्क में जो थे, बाकी कोई नहीं पहचान पाया। एक दिन श्री महाप्रभु पढ़ाकर अपने घर लौट रहे थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु से भी अभी परिचय नहीं हुआ। रास्ते में अचानक क्या दृष्टि पड़ी, एक दूसरे को नहीं जानते अभी, और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, पढ़ाते थे, शिक्षक थे, तो पढ़ा करके अपने घर जा रहे थे। देव योग से रास्ते में इन्हें श्री ईश्वरपुरी के दर्शन हुए। प्रभु ने इन्हें अपना सेवक जानकर नमस्कार किया। भगवान चैतन्य नमस्कार कर रहे हैं, अपना सेवक जानकर के, मतलब वैष्णव जानकर के नमस्कार किया, क्योंकि भगवान गृहस्थाश्रम में है। सेवक होते हुए भी श्री गौर सुंदर ने उन्हें अपने आप प्रणाम किया। श्री गौरांग सुंदर रूपवान थे, सब प्रकार से विलक्षण थे, अलौकिक गुणवान थे। यद्यपि इनके तत्व को कोई नहीं जानता था, तो भी सब लोग इनको देखकर भयभीत होते थे। जो घमंडी लोग थे वो चैतन्य महाप्रभु देख के भयभीत होते थे। श्री पुरी जी ने प्रभु की ओर देखा। श्री महाप्रभु उन्हें एक सिद्ध पुरुष की तरह परम गंभीर दिखाई दिए। जिज्ञासेन ए मत ईश्वर पुरी नवद्वीप पुरे अलक्षिते बसे न चीनी ते के हो नरे। देव एक जन प्रभु श्री गौर सुंदर पढ़ाइया आई सेन अपना रे घर। पथे देखा है ले ईश्वर पुरी सने भृत देखी प्रभु नमस्कारी ला अपनी। अति अनिर्वचनीय ठाकुर सुंदर सर्व मत सर्व विलक्षण गुण धर्म। यद्यपि यो तान मर्म के हो ना ही जाने तथापि साधु से करे देखी सर्व जने। चाहे न ईश्वर पूरी प्रभु रे शरीर सिद्ध पूरा सिर प्राय परमे गंभीर। अब चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया, लेकिन बोला कौन उन दोनों में? सबसे पहले ईश्वरपुरी बोले। ईश्वरपुरी ने पूछा, विप्रवर आपका क्या नाम है? ये सबसे पहला मिलन गुरु से सगा, भगवान के गुरु जो है भगवान से पूछ रहे हैं, क्या विप्रवर आपका क्या नाम है, क्या पुस्तक पढ़ाते हो पढ़ते हो, आपका निवास स्थान कहाँ है? तो साथियों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु जो साथी थे, मतलब उनके विद्यार्थी, उन्होंने कहा इनका नाम है निमाई पंडित। श्री पुरी बोले, अच्छा आप हैं वो? निमाई पंडित का नाम सुना था, बहुत विद्वान है। श्री पुरी प्रभु को देखकर बड़े आनंदित हुए। प्रभु ने उन्हें भिक्षा का निमंत्रण दिया, मतलब अपने घर में भोजन, इसे भिक्षा बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने घर में भोजन का निमंत्रण दिया और उन्हें अपने घर ले चले। माता सची ने भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पण किया। श्री पुरी जी ने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर में बैठ गए। कौन सा मंदिर? निमाई पंडित के घर में ही जो मंदिर था उसमें बैठ गए। फिर वे श्री कृष्ण कथा प्रसंग कहने लगे। कृष्ण कथा कहते कहते बेहबल हो गए। प्रेम अश्रुधारा को देखकर प्रभु अति संतुष्ट हुए, किंतु प्रभु ने अपने को अभी प्रकाशित ना किया, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था। अभी चैतन्य महाप्रभु क्या है, एक विद्वान के रूप में है, वैष्णव के रूप में नहीं है। श्रीपुरी का कृष्ण प्रेम देख करके संतुष्ट हुए, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं कहा। जिज्ञासेन तुम्हारे के नाम है विप्रवर के पोथी पढ़ाओ पढ़ कोन स्थाने घर। से सभे बलि लेन निमाई पंडित तुम से ही बलिया बढ़ाई या हर्षित। भिक्षा निमंत्रण प्रभु करे लाने महादरे गृह लई चलीला अपने। कृष्ण ने वेद आई करी लेने गिया भिक्षा करी विष्णु गृह बसीला आसियम। श्री कृष्ण प्रस्ताव तब कही तेला गिला कही ते कृष्ण रे कथा बेवले हईला। देखिया प्रेमेर धारा प्रभु रे संतोष ना प्रकाश अपना लोके रे दिन दोष। ईश्वरपुरी कई महीनों तक नवद्वीप में रहे। किस घर में? गोपीनाथ आचार्य के घर में। उनको देखकर के सब वैष्णवों को बहुत आनंद होता था। महाप्रभु भी नित्य क्या करते हैं, इनके दर्शन करने जाते हैं। रोज का नियम था चैतन्य महाप्रभु का ईश्वरपुरी का दर्शन करना। कथा प्रसंग में श्री गदाधर पंडित के प्रेमाश्रुओं को देखकर सब वैष्णव उनसे बहुत प्रेम करते थे। गदाधर पंडित, उनका मन बालपन से ही संसार से विरक्त था। ईश्वरपुरी उनसे बहुत स्नेह करते हैं। किससे? गदाधर पंडित से। तो ईश्वरपुरी उनसे बहुत स्नेह करते हैं। वे गदाधर पंडित से अपनी पुस्तक पढ़वाया करते थे। उनकी एक लिखी पुस्तक थी, क्या था? श्री कृष्ण लीलामृत। उसको गदाधर पंडित से पढ़वाते थे और ईश्वरपुरी स्वयं सुनते थे अपनी पुस्तक। और महाप्रभु भी पढ़ करके अंत संध्या समय ईश्वरपुरी को नमस्कार करने जाते थे। इनको देख करके ईश्वरपुरी बहुत प्रसन्न होते थे। वे ये नहीं जान सके कि उनके ही इस देव श्री कृष्ण हैं ये, फिर भी इनसे बहुत प्रेम करते थे। भगवान की योग माया, अपने भगवान को नहीं पहचान पाते हैं ईश्वरपुरी कि स्वयं कृष्ण है। उनको नमस्कार करते हैं ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी के दर्शन करने कृष्ण स्वयं आते हैं। मासे कथो गोपीनाथ आचार्य रे घरे रहिला ईश्वर पूरे नवद्वीप पूरे सबे बड़े उल्लासित देखिते ताहने प्रभु देखिते नित्य चले न आपने गदाधर पंडित तेरे देखी प्रेम जल बड़े प्रिय बासे ताने वैष्णव सकल शिशु है ते संसारे विरक्त बड़े मने ईश्वर पूरी उसने करे न ताहनी गदाधर पंडित तेरे आपना रे कृत पोथी पढ़ाए न नाम कृष्ण लीलामृत पढ़ाई पढ़िया ठाकुर संध्या काले ईश्वर पूरी रे नित्य नमस्कार चले प्रभु देखी श्री ईश्वर पूरी हर स्थित प्रभु है न जाने न प्रभु बड़े प्रीत। अब एक दिन ईश्वरपुरी ने कहा किससे, चैतन्य महाप्रभु से। क्या कहा? हे विश्वंभर, आप बहुत बड़े विद्वान हो, मैंने श्री कृष्ण चरित नामक पुस्तक लिखी है, उसे तुम देख करके बोलो कि कहां क्या क्या दोष रह गया है, इससे मुझे बहुत संतोष होगा। महाप्रभु बोले, एक तो भक्त की वाणी और फिर कृष्ण का चरित्र है? भगवान कहते हैं एक तो भक्त की वाणी है और दूसरा कृष्ण का चरित्र है, तो उसमें जो दोष देखता है वो तो पापी है। भक्ति ग्रंथ रचना जैसी भी क्यों ना हो, उसमें निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। ठीक है, मूर्ख तो विष्णाय नमः कहता है और विद्वान विष्णवे नमः कहता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण दोनों के वचनों को समान भाव से ग्रहण करते हैं। शुद्ध क्या है? विष्णवे नमः। इन कोई मूर्ख है विष्णाय नमः कहता है तो भी भगवान को जो ना एक समान है। हसिया बोले न तुम ही परम पंडित आमी पोथी करी अच्छी कृष्ण रे चरित सकल कहे बा को था के कौन दोष यहाँ ते अमार बड़े परम संतोष है। प्रभु बोले भक्त वाके कृष्ण रे वर्णन यहाँ ते जो दोष देखी से ही पापी जन भक्त रे कवित्व जेते मते किन नहीं सर्वथा कृष्ण रे प्रीतता दे निश्चय। मूर्ख बोले विष्णाए विष्णवे बोले धीर दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। विष्णु भगवान को प्रणाम करते समय मूर्ख व्यक्ति विष्णाय नमः कहता है और पंडित कहता है विष्णवे नमः, किंतु पुण्य दोनों को समान होता है, क्योंकि श्री भगवान भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करते हैं, वचन के शुद्ध अशुद्ध होने पर ध्यान नहीं देते। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे अभ्योस्ति अभ्योस्तो समं पुण्यं भावग्राही जनार्दनः। अब महाप्रभु ने कहा क्या कहा? प्रभु, जो व्यक्ति भक्तवाणी और कृष्ण चरित में दोष देखता है वही दोष उसी में है। भक्तों के वर्णन मात्र में श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, इसलिए आपका जो प्रेमय वर्णन है उसे देखने या संशोधन करने का कौन साहस कर सकता है। भगवान कह रहे हैं। श्री प्रभु के उत्तर को श्री पुरी सुनकर अति आनंदित हुए, मानो उनका सब शरीर अमृत से नहा गया हो। भगवान की वाणी इतनी मधुर है जैसे अमृत से नहा गए हो, ऐसा लगा। फिर ईश्वरपुरी हंसकर बोले, विश्वंभर, उसमें तुम्हें कोई दोष न लगेगा, किंतु जहां इसमें कोई दोष हो वो मुझे बता दो। भगवान के आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप मुझे बताओ इसमें जो भी दोष हो। यहाते जो दोष देखे ताहाते से दोष भक्ति रे वर्णन मात्र कृष्ण रे संतोष अतएव तो महाराज प्रेम रे वर्णन यह दोषी वे के कौन साहसिक जन सोनिया ईश्वर पूरी प्रभु रे उत्तर अमृत सिंचित हैल सर्व कलिवरण पुनः हासी बलिला तो मार दोष नहीं अवश्य बलिवा दोष था के जे ठाई। इस प्रकार महाप्रभु श्री पुरी जी के साथ प्रतिदिन दो चार घड़ी के लिए जाकर विचार विमर्श करते हैं। दो चार घड़ी का मतलब कितना हुआ, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो दो घड़ी का मतलब 48 मिनट है ना, चार घड़ी डेढ़ घंटा है ना, तो घंटा डेढ़ घंटा तक चैतन्य महाप्रभु रोज उनसे चर्चा करने लगे। एक दिन प्रभु उनकी कविता को सुनकर के हंसे और बोले यहां तो धातु की संगति नहीं बैठ रही है। प्रभु ने कहा यह धातु आत्मनेपदी लगाना संगत नहीं है। इतना कहकर प्रभु अपने घर चले गए। ईश्वरपुरी भी समस्त शास्त्रों के पंडित थे, विद्या रस के विचार में बड़े हर्षित होते थे। प्रभु ने घर पर आकर उस धातु पर पुनः विचार किया और उसका सिद्धांत निश्चित किया। दूसरे दिन जाकर प्रभु ने उसकी स्थापना की। बोले प्रभु जिस धातु को आपने परस्मैपदी रूप से प्रयोग किया था उसे मैं आत्मनेपदी में जोड़ करके लाया हूं। यही मत प्रतिदिन प्रभु तान संगे विचारे करे ने दुई चारी दंड रंगे। एक दिन प्रभु तान कविता सुनिया हासी दूसी लेने धातु ना लगे बलिया। प्रभु बोले ए धातु आत्मा ने पदी न बलिया चलीला प्रभु आपन आलय। ईश्वर पुरी यो सर्व शास्त्र ते पंडित विद्या रस विचारे यो बड़े हर्षित। प्रभु गेले सही धातु करे न विचार सिद्धांत करे ने तही अशेष प्रकार। सही धातु करे ने आत्मा ने पदी नाम आर्यन प्रभु गेले करीला व्याख्यान। जे धातु परस में पदी बलि गेला तुम्ही ताहा ए साथी लो आत्मा ने पदी आमीन। प्रभु की व्याख्या को सुनकर ईश्वरपुरी बड़े संतुष्ट हुए। फिर उसके बाद प्रभु ने अपने भक्त पुरी जी को विजयी बनाने के लिए दोष नहीं निकाला, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों की जय करते हैं। सब वेद प्रभु के स्वभाव का वर्णन करते हैं। इस प्रकार अनेक दिन ईश्वरपुरी श्री महाप्रभु के साथ विद्या अध्ययन रस का आस्वादन करते रहे। ईश्वरपुरी श्री पुरी भक्ति रस के आस्वादन के लिए सदा चंचल रहते थे, इसलिए एक स्थान पर टिक करके ना रहते थे। पृथ्वी को पवित्र करने के लिए वे नवद्वीप से अन्यत्र चले गए। व्याख्यान सुनिया प्रभु परम संतोष भृत्य जय निमित्त न देन आरे दोष। सर्व काल प्रभु बढ़ाए न भृत्य जय एतान स्वभाव सकल विदे कहे। ए मत कथो दिन विद्या रस रंगे अचिल ईश्वर पूरी गौर चंद्र संगे। भक्ति रस चंचल एकत्र न स्थिति पर्यटने चलीला पवित्र करे छिति। तो जो व्यक्ति ईश्वरपुरी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, अब सुनिए इसको तो सुनो, जो सुनेगा उसका श्री कृष्ण चरण कमलों में सदा निवास होगा। किसने सुना और किसने नहीं सुना, इसमें अंतर है। उसमें उसका मन सदा रमा रहेगा। माधवेंद्रपुरी में जितना प्रेम था वो सब उन्होंने अंत समय श्री ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था। अतः श्री गुरुदेव द्वारा श्री कृष्ण कृपा को प्राप्त कर वे निर्विरोध होकर सदा भ्रमण करते रहते थे। जे सुनाए ईश्वर पुरी रे पुण्य कथा तारे बास है कृष्ण पाद पद में यथा। जत प्रेम माधवेन्द्र पुरी रे शरीरे संतोष देले न सब ईश्वर पुरी रे। पाई गुरु रे प्रेम कृष्ण रे प्रसादे भ्रमे न ईश्वर पुरी अति निर्विरोधे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। तो वृंदावन दास चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों की सन्निधि में उनका लीला गुणगान करते हैं। तो चैतन्य भागवत के आदि खंड का सातवां अध्याय ये था। अब ईश्वरपुरी के संबंध में एक और चरित्र है चैतन्य महाप्रभु का, जब वे वैष्णव दीक्षा प्राप्त करते हैं ईश्वरपुरी से, तो ये घटना है, चैतन्य महाप्रभु गया में गए हैं, जगन्नाथ मिश्र जो उनके पिता हैं, तो उनका श्राद्ध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गया में गए। तो गया में भगवान के चरण कमलों का चिन्ह है, तो ब्राह्मण कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु श्रवण कर रहे हैं ब्राह्मणों से, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं जिन चरण कमलों को श्री काशीनाथ शिव हृदय में धारण करते हैं, जो चरण श्री लक्ष्मी के नित्य जीवन है, जो राजा बलि के सिर पर विराजमान हुए, इन्हीं चरणों का भाग्यवान ही दर्शन करते हैं, वो चरण चिन्ह जिन चरणों का एक क्षण मात्र ध्यान करने से मनुष्य यम यातना को नहीं भोगता, जो चरण समस्त योगेश्वरों के लिए दुर्लभ हैं, इन्हीं चरणों का भाग्यवान ही दर्शन करते हैं, जिन चरणों से श्री गंगा प्रकट हुई एवं जिन्हें भक्तगण कभी भी त्याग नहीं करते, और श्री अनंत सैया पर जो चरण अति मनोहर रूप में विराजमान रहते हैं, इन्हीं चरणों का वही दर्शन करते हैं जो भाग्यवान है। काशीनाथ हृदय धारीला जे चरण, जे चरण निरवधि लक्ष्मी रे जीवन, बलि शेरे आविर्भाव हाइले जे चरण, से देखे जत भाग्यवंत जन, तिलार्धे को जे चरण ध्यान कैले मात्र, यम तार नहायन अधिकार पात्रन।